नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से। ये विशेष प्रस्तुति है 21 दिवसीय योग चैलेंज, जिसका नाम है संपूर्ण योग। आजकल जब हम योग जब सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ योगासना की बात हो रही है, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस या आसन कर रहे हैं, कोई पोजेस कर रहे हैं और यही योगासन है। मगर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। योग आसन योग का एक छोटा सा हिस्सा है और ऐसे में संपूर्ण योग क्या है उसे समझने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज की ये छोटी सी कोशिश है कि योग को संपूर्ण रीति से समझकर उसके कंप्लीट बेनिफिट्स को हम सभी ले सकें। और इसलिए हम हर दिन आपको एक नया आसन यानी योगासन सिखाते हैं और उसके साथ साथ योग के जो अलग अलग आयाम है, जो कंप्लीट योगा है, उसे भी सीख रहे हैं। तो योग के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए आज के कार्यक्रम के तीन हिस्सों में पहले हम करेंगे योगासन, फिर इसके बाद सुनेंगे आज के योग की गहराई के विषय में एक बोध, और फिर इसके बाद आएगा आज का राजयोग ध्यान मेडिटेशन। तो इन तीनों हिस्सों में आप हमारे साथ रहिए। आने वाले आधे पौने घंटे में हम इन सारी चीजों को एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं योगासन से। अगर इस बीच अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट लिखना चाहते हैं या कोई बात फीडबैक देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो सब कुछ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक से। क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है तो हम आपके क्वेश्चंस को लाइव लेंगे और हमारे एक्सपर्ट से उन प्रश्नों का उत्तर भी लेंगे। तो कार्यक्रम के दौरान कहीं पर भी आप सवाल पूछने के लिए हिचकिचाए नहीं, बेझिझक सवालों को लिखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट से, यानी योगासन से। आप भी अपने घर में जहां बैठे हैं वहां हो जाइए तैयार और साथ साथ हमारे साथ इस योगासन को कीजिए, ताकि हमारा योगासन हर दिन का एक आसन होता रहे और हम बाद में अपने आप इन योगासनों को प्रैक्टिस कर सकें। हमारे साथ योगासन कराने के लिए योगाचार्य हरीश वैद्य जी जुड़े हैं बड़ौदा से। चलिए चलते हैं उनके पास आज के योगासन के लिए।
ओम शांति, वंदे मातरम। योग सभा में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जो जीवन भर के लिए आपको करने होते हैं। योगी जीवन में तो खास, क्योंकि जिन लोगों को लंबे समय तक अभ्यास करना है योग का, एकाग्रता का, कॉन्सेंट्रेशन का, जिनको भगवान से जुड़ना है और लंबे समय तक आसन में बैठे रहना है, एक ही मुद्रा में बैठे रहना है, वो आज हम दो तीन आसन ऐसे आपको बता देते हैं। उनमें से आपको जो उचित लगे उस आसन में लंबे समय तक आप बैठने का अभ्यास करें तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सबसे पहली शर्त जो होती है वो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे जमीन से 90 कोण पर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बिल्कुल दंडासन में आ जाइए, पहले दोनों पैर लंबे कर दीजिए, दोनों हाथ इस प्रकार से रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, फिर लेफ्ट वाले पैर को इस प्रकार मूलाधार पर ले ले, फिर ये पैर नीचे रख दे और ऐसे बिना हाथ के स्पर्श के आप कर सकते हैं। इन्होंने भी कर दिया है, ऐसे सीधे बैठेंगे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 अंश हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, ये ज्ञान मुद्रा हो और सीधा बैठ ले बिल्कुल। इसमें बहुत लंबे वक्त तक आप बैठ सकते हो। अच्छा, तो ये हुआ पद्मासन, थोड़ा प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा। ओके, ये हुआ अर्ध पद्मासन। ये राइट वाली टांग है वो नितंब के नीचे रख दें और राइट लेफ्ट वाली टांग उठा करके राइट की जंघा पर रख दें। ये हुआ अर्ध पद्मासन। आदरणीय हमारे ब्रह्मा बाबा जी इसी आसन में लंबे समय तक बैठते थे, मुरली चलाया करते थे, बच्चों से मिलते थे और सबको खुशी बांटते थे। तो ये अर्ध पद्मासन हो गया और अर्ध पद्मासन के करीब ही गौमुखासन है, बिल्कुल इस प्रकार से आप भी ले लीजिए पूरा स्थान आपका। गौमुखासन में घुटनों के ऊपर घुटना आना चाहिए, बिल्कुल घुटनों के ऊपर घुटना ले ले, राइट वाले हाथ ऊपर करें, लेफ्ट वाले को पीछे से ले जाइए और पीछे से हाथ से पकड़ लीजिएगा, ऐसे। ये हुआ गौ मुखासन। ओके, रिलैक्स। इसको कई लोग गोरक्षासन भी कहते हैं, गोरक्ष मुनि ने ये सिखाया था, इसलिए इसमें गाय को ये साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये हुआ गौमुखासन, गोरक्षासन। और अब हम बैठेंगे पालथी मार के, जिसको सुखासन कहते हैं। दंडासन में बैठ जाइए, हमारी ऋतुबेन बाटी सिखाएंगे आज हमारे बीच में है, योग इंस्ट्रक्शन है हमारे संस्था की, सर्वोपचि योगालय की, और गुजरात सरकार की भी वो योग प्रशिक्षिका है, गवर्नमेंट में क्लासेस लेक्चर लेती है वो। अच्छा, अभी वो सुखासन बताएंगे आपको। बस सीधा पालथी मार के बैठ जाना है, जैसे ये पैर यहां ले लिया, ये यहां ले लिया, ये सुखासन हो गया। और अभी जो है वो स्वस्तिकासन में बैठना है आपको, इस प्रकार से दंडासन में बैठना है, मैडम ने बराबर किया है। और इस पैर को यहां इस घुटनों के कोने में लगा देना है, फिर इस पैर को नीचे लेना है और इसको फिर यहां इसमें फंसा देना है। तो ये हुआ स्वस्तिकासन, एक पैर इधर मुड़ेगा, एक पैर इधर मुड़ेगा। अच्छा, तो इसमें भी आप लंबे समय तक बैठ सकते हो, ये बिल्कुल स्वस्तिकासन है, सुखासन है, सिद्धासन है, बिल्कुल करीब करीब के आसन है। और सिद्धासन में तो नितंब का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वो आने वाले समय में बताएंगे। अच्छा, ये आसन से हमारी रीढ़ की हड्डियों में ताकत बढ़ती है, उसमें दिन भर में जो मूवमेंट होता है उसमें उपयोगी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इससे मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होता है, अभी हमने जो आसन बताया मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, स्वाधिष्ठान बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। अगर स्वाधिष्ठान कंट्रोल में नहीं है तो कामुकता बढ़ती है, इसलिए पद्मासन में दोनों एड़ियां जब यहां चिपकती है ना तो कामुकता कंट्रोल हो जाती है। ये ब्रह्मचर्य की साधना वालों को बहुत ही अच्छा रहता है, ये ब्रह्मास्त्र है उनके लिए, इसलिए ये इसकी साधना अवश्य करें। सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल इजी आसन है, इसमें आप लंबे समय तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है हमारा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सर्वाइकल तक, ऊपरी हिस्से तक बिल्कुल अच्छी रहती है। हमारा आज्ञा चक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और आज्ञा चक्र शक्तिशाली होने के कारण सहस्त्रार्ध में बिल्कुल आसानी रहती है। तो ये बैठे बैठे किए जाने वाले आसन है, इसमें से बहुत सारे आसन तो आपको आते होंगे, अगर आप विदेशी नहीं है तो। विदेशी होते तो इतने तक वो ऐसे ही बैठते हैं, उनका ये नीचे आता ही नहीं है, ये हिस्सा नीचे आता ही नहीं है। जैसे उनके घुटने अगर समझो जमीन से चिपकाने नहीं चिपकेंगे। ये हमने सुखासन में बैठते हुए आपको बताया है, सुखासन में एक पैर इधर बिल्कुल चिपक जाता है, एक यहां चिपक जाता है, और ये सुखासन हो गया। तो इसमें दोनों घुटने जो है जमीन से चिपकते हैं, आप लंबे समय तक इस आसन में बैठ सकते हैं बिल्कुल बिना डिस्टर्ब हुए। अच्छा, आज के इस संवाद का पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूं। प्राणों से भी अधिक प्रिय
तो दोस्तों, हम योगासन करके आए हैं अभी। आज बहुत ही आसन जो सीखे हैं वो आसान से आसन थे, हम सभी कर सकते हैं। और आज हमने पद्मासन सीखा, सुखासन सीखा, स्वस्तिकासन सीखा, हालांकि इसी आसन के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन थे जैसे हम सब कर सकते हैं और बैठ कर सकते हैं। और कोशिश ये है कि जब भी ये आसन सिखाए जा रहे हों हम सभी लाइव इन आसनों को कर सकें। तो आज चलते हैं आज के बोध की तरफ, क्योंकि जब योग को हम संपूर्ण रीति से समझना चाहते हैं तो उसकी समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनि पतंजलि ने योग के अष्ट अंगों के बारे में बात की है, उसमें से यम, नियम, ये अलग अलग प्रकार योग के बताए गए हैं। और उसमें हमने पिछले 5 दिनों में अनेकों यमों को सीखा, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अचौर्य, इन सब चीजों को सीखा है। आज हम पतंजलि के सूत्रों के अगले सूत्रों पर जा रहे हैं, जिनमें से अभी अगला सूत्र आएगा वह है नियम की बात करी जाती है। तो आइए इसके बारे में और ज्ञान लेते हैं। और हमारे साथ इसे बताने के लिए ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी जुड़ेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी के यूरोपीय सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। और दीदी हाल फिलहाल में लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूल रूप से वो ब्रह्मा कुमारी के जर्मनी फ्रैंकफर्ट के सेवा केंद्र में रहते हैं और वहां पर मूल तरीके से जो यूरोप की सेवाएं हैं वहां की सेवाओं को वो देखते हैं। आइए दीदी जी से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं आज के बोध के बारे में। दीदी स्वागत है आपका। दीदी आज के विषय पर हम आप सभी से जानना चाहेंगे। जी
स्वाध्याय इंटरनेशनल डे योगा के लिए ये 21 दिन का योग 21 बड़ा विशेष एक्चुअली दिन है, विशेष गिनती का भी दिन है गिनती के हिसाब से, पर आज का विषय भी बड़ा मन भावन है। यम नियम साधना क्रिया तपस्या करने वाली कौन, कर्म इंद्रियों द्वारा योग करने वाली कौन, कर्म को हम कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं परंतु करने वाली स्वयं चैतन्य शक्ति है। तो स्वाध्याय स्व का स्वयं अध्ययन करना बहुत आवश्यक है और बड़ी अति प्रिय है। स्वाध्याय यानी मैं स्वयं कौन हूं, और अध्ययन करने पर और ध्यान देने वाली तो मन का ध्यान, बुद्धि की एकाग्रता और कर्म इंद्रियों का डिसिप्लिन। कर्म इंद्रियां जो एक है दिखाई देने वाली शक्ति, जिसको हम कहेंगे कि विजिबल मशीनरी है, परंतु इसका जनरेटर एक्टिवेट करने वाली शक्ति। तो जब हम कहते हैं स्वाध्याय यानी हमारे अपना अध्ययन करना और साथ साथ अध्ययन करने वाली मैं आत्मा जो हमारी प्राचीन संस्कृति है जिसमें योग सिखाया गया है, जिस शास्त्र में ये विद्या का ज्ञान दिया गया है, प्राचीन योग पतंजलि योग बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कर्म इंद्रियों से बड़ा सुंदर रीति से नियंत्रण, मन की एकाग्रता की विधि। परंतु मन क्या है, बुद्धि का योग जोड़ने की अथवा ध्यान देने की क्रिया करने वाली कौन है, तो वो स्वयं है। और इसका ज्ञान सरस शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में 5000 वर्ष पहले, तो हमारी प्राचीन संस्कृति भारत का प्राचीन राजयोग श्रीमद् भगवत गीता जी में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है, जिसमें सेकंड चैप्टर में परमात्मा ने अर्जुन को अथवा आर्यजन को, क्योंकि आर्यजन का श्रेष्ठ धर्म कर्म सीखने और सिखाने का योग विद्या का ज्ञान 18 चैप्टर में जो दिया गया है, तो हर एक अध्याय में अध्याय चैप्टर भी है और फिर स्वाध्याय अध्ययन भी है स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ते जाना। तो सेकंड चैप्टर में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान दिया हुआ है स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय, ये जानना कि मैं कौन हूँ। और जब मुझे अपनी पहचान मिल गई कि मैं कौन हूँ और मेरा ये कर्म इंद्रियों से संबंध क्या है, तो जब मेरी कर्म इंद्रियां का मेरा संबंध जुटा तो मेरी कर्म इंद्रियां मेरी आज्ञा अनुसार बहुत सहज रीति से जिस प्रकार से मैं उनको सुचारू रूप से चलाना चाहूं, कर्म योग करते हुए योग करूं या स्थित होकर के आसन करूं। तो आसन तो एक स्थिति है कमलासन, फर्स्ट स्टेप कमलासन, पद्मासन। तो मतलब इस प्रकृति में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, इसमें इस सरोवर में, इस शरीर के सरोवर में मिट्टी भी बहुत है, तभी कहते हैं डस्ट टू डस्ट, और 85% पानी भी है। तो इस प्रकृति के शरीर में रहते हुए मुझ आत्मा को स्वयं की पहचान, मेरा अध्ययन कि मैं कौन हूं, मेरे शरीर को मैं स्वस्थ रखना चाहता हूं, तो स्व स्थिति से स्वस्थ ठीक रहता है स्वस्थिति। तो स्व स्थिति का अध्ययन, यानी मेरे मन में संकल्प किस प्रकार के चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, क्रिएटिव संकल्प चल रहे हैं, कल्याणकारी संकल्प चल रहे हैं, तो अपने मन के संकल्पों का भी निमंत्रण, जिसके लिए भगवान ने फिर कहा मन मना भाव, मन को मेरी तरफ लगाओ, क्योंकि वो मन इमोशनल होकर के मोहवश कीचड़ में फंसना जावे, इसलिए उससे ताकि कर्म इंद्रियों से वो कर्म कर सके। कर्म करना मेरा धर्म है, जैसे कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन कर्म धर्म है, पर धर्म को समझने वाली, स्वधर्म में टिकने वाली आत्मा को पहले स्व का अध्ययन करना है। तो मैं कौन, मैं और मेरा दो शब्द बोलते हैं, मेरा मुख, मेरा हाथ, मेरा आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, मैं और मेरे में, मैं चैतन्य शक्ति, मेरा प्रकृति की शक्ति। तो प्रकृति को भी साधना दे कर साधना है और मन की भी साधना है, मन को सिद्धि देना, शुद्ध विद्धि देना, उसके लिए भगवान ज्ञान देते हैं, इसलिए ज्ञान योग है। तो स्वयं का अध्ययन करने के लिए ज्ञान चाहिए कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, और वो मैं जो चैतन्य शक्ति हूँ, ये विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, पर वेरी मच विजिबल है, क्यों कि मैं जब आत्मा शरीर में हूँ तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू को मैं जानती हूँ, उस वैल्यू को मैं दूसरी आत्मा से शेयर करके दूसरों को प्रेरणा दे सकती हूँ, उत्साह दिला सकती हूँ। तो इसीलिए इस अध्ययन से जीवन की वैल्यू का पता चलता है, अपनी वैल्यू का पता चलता है, क्योंकि मैं वैल्यूबल ज्यूवल इस बॉक्स में हूँ, तो बॉक्स की वैल्यू है, शरीर की वैल्यू है, मैं इस तब मैं स्वस्थ हूँ। जैसे ही मैं चली गई, शरीर को कोई स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए मैं इसमें रहते हुए कैसे रहूं? पहला आसन है पद्मासन, यानी मैं आत्मा इस प्रकृति के तत्वों में, इस सरोवर में रहते हुए कीचड़ से न्यारी रहूं, ट्रस्टी होकर के रहूं, गृहस्थी इसमें फंस नहीं जाऊं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते कीचड़ से न्यारा रहता है। तो ये मुझे स्मृति चाहिए, समझ चाहिए, शक्ति चाहिए डिटैच होने की। मेहनत की बात नहीं, परंतु स्वयं का अध्ययन होने से पता है कि मैं शरीर से वास्तव में तो न्यारी आत्मा हूँ, सेपरेट है आत्मा और शरीर, दो और दो शक्तियां हैं। इसलिए स्व स्थिति में स्थित होने से हमारा जो नेचुरल आसन है, दृष्टि का आसन भी कमल आसन, मुख का आसन भी कमल आसन, कानों का आसन भी कमल आसन, सिर्फ हमको सिर्फ सिर्फ अपनी कर्म इंद्रियों को यूज करने की बात नहीं, कर्म इंद्रियों के साथ साथ जो आत्मा की इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, आत्मा की कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि और संस्कार, तो हृदय कमल है, मन कमल की तरह है, दृष्टि कमल नयन, कमल मुख, कमल चरण। फिर नेचुरली जो हमने जब इस बात का अभ्यास किया, इस अब स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी मन की वृत्ति, संकल्प में वृत्ति कैसी है, अपनी वृत्ति का विवेचन, अपनी वृत्ति का दर्शन, और फिर उस पर नेचुरली जब ज्ञान की शक्ति है, नॉलेज इज ज्ञान, लाइट भी है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान धन भी है, तो उस आधार से उसकी वैल्यू को समझते हुए, पावर को समझते हुए, योग किससे लगता है, सेकंड आसन है सूर्य नमस्कार, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि आत्मा को ज्ञान प्रकाश करने के लिए, स्वयं को अंधकार से निकालने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए, तो सूर्य नमस्कार यानी परमात्मा ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश, तो अंधकार का विनाश करने के लिए परमात्मा ज्ञान के साथ संबंध, ज्ञान सूर्य के साथ संबंध, और स्वच्छ बनने के लिए, शीतल बनने के लिए ज्ञान सागर की लहरों में लहराना। इसलिए वो कर्म इंद्रियों में रहते हुए कर्म इंद्रियों को समेटने की शक्ति और कर्म इंद्रियों को स्वतंत्र करने की शक्ति, यानी वो बहुत बहुत फ्लेक्सिबल हो, रियल गोल्ड। तो इसलिए कछुए की मिसाल है कि हमारी एक्सरसाइज जैसे कर्म इंद्रियां, कछुआ चलता है तो उसके अंग फैल जाते हैं, बैठता है कर्म खाने करने के लिए, घास खाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए हमको कर्म करना है, परंतु कर्म करते स्वयं का अध्ययन करना है कि मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरे विचार, मेरा व्यवहार और मेरा संस्कार, तो वो साधना, वो तप तपस्या ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होती है। तो ध्यान, जप, तप, ध्यान, किस बात का, अंतर ध्यान। जब हम अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होते हैं तो अंतर ध्यान यानी हमारा ध्यान अंतर में अपनी इंद्रियों पर रहता है। तो क्योंकि जो हमारे संस्कार, हमारे जो जिस प्रकार के नियम, जम नियम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी संस्कारों को और अपने व्यवहार को ठीक सुधार सके। इसीलिए मन का स्वचिंतन, चिंतन के साथ साथ नेचुरली हमारी जो कर्म इंद्रियों से व्यवहार होगा, चलन होगी, वो निरंतर निरंतर रहेगी, कंट्रोल फोर्स से कंट्रोल नहीं होगी, सहज होगी। इसलिए सहज राजयोग यानी रॉयल्टी हमारे जीवन में रहेगी, समझ भी रहेगी, शक्ति भी रहेगी और दिव्यता रहेगी ऑटोमेटिकली। क्यों कि उसमें हर एक आत्मा को, जब हम आत्माएं बिल्कुल न्यारी होकर के रह सकती हैं, किसी के प्रभाव में नहीं, ट्रस्टी होकर के रहते हैं, तो हर एक आत्मा के लिए कल्याण की भावना रहती है, तो ऑटोमेटिक कर्म करते हुए भी, कर्म करते हुए भी कर्म योगी। इसलिए राजयोग, कर्म योग, संन्यास योग, प्रवृत्ति में रहते स्वयं रहते हुए एकदम विकारी वृत्तियों से, इसलिए मन तथा वृत्ति पर कंट्रोल, वैराग वृत्ति परंतु अनुराग प्रभु से प्यार भी रहे, अन्य आत्माओं के साथ भी प्यार रहे, इसलिए दिव्य गुणों की धारणा। तो मैं आत्मा ऐसे इस आसन में स्थित अंतर्मुखी होने से, स्वस्थ में स्वस्थिति में स्थित होने से, प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान जब है, तो लास्ट आसन है शवासन। क्या मतलब है? शरीर से मैं एकदम न्यारी, रिलैक्स्ड। शव तो डेड बॉडी को कहते हैं, परंतु मतलब क्या है कि बॉडी निर्जीव में जीव भरना है न्यारा होके। इसलिए स्वयं का अध्ययन, कर्म करते जीते जी रहते हुए नए जीवन का अनुभव हो, और पुराना देह के प्रभाव से, भारीपन से, बंधन से, बोझ से फ्री हो जावे, इसका नाम है स्वास्थ्य योग। स्वास्थ्य योग, स्वस्थ रहना, स्वस्थिति का अध्ययन करना। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश तिवारी जी का, जो सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत ही अच्छे शब्दों में हमने सुना है कि स्वाध्याय क्या है। और आज हम सभी ने पद्मासन के बारे में सुना, ये बताया कि भाई हम सभी करते तो हैं, आसन तो करते हैं, पर आसन करते करते अंदर क्या सोचना है ये भी हमको पता चला। और सिर्फ शरीर के लिए आसन नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए है, मगर आत्मिक स्वरूप में मेरा चिंतन भी वैसा होना चाहिए। मैं भी कमल के फूल के समान पद्म के रूप में, पद्मासन के स्थिति में मैं रहूं, और हर कर्म को करते समय वो स्मृति रखूं। ये बहुत ही खूबसूरत बात आज सुनने को मिली है। दोस्तों, अगर आपने कुछ भी पूछना है, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों को हम दीदी जी से पूछेंगे और उसके लिए मार्गदर्शन लेंगे। मैं एक प्रश्न दीदी जी से करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि हम अपने कर्मों को ऐसे बना दें कि आंखें कमल के समान हो जाएं, कान कमल के समान हो जाएं, हाथ कमल के समान हो जाएं, जब ये करने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि ये थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, चूक हो जाती है हमसे, हम गुस्सा करना तो नहीं चाहते बट हो जाता है। ये स्वाभाविक सा लगता है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं ऐसा लगता है। ऐसे में हम अपने मन को कैसे कमल समान बनाएं कि हम वापस मिट्टी में या कीचड़ में हमारा मन जाए नहीं।
अब मन को, क्योंकि जिस समय हम साक्षी दृष्टा, यानी परिस्थिति तो है, जब ये बात समझ में आ गई, ये स्वीकार करना है पहले कि बराबर ये परिस्थिति है, पर डरने, अगर हमको डर और चिंता कर लेते हैं तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं परिस्थिति को, स्वस्थिति में हलचल मचाने की। इसलिए स्वास्थ्य स्वाध्याय से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, स्वयं के अध्ययन से। तो परिस्थिति जो हमको परेशान कर रही है अथवा भय पैदा कर रही है, इनसिक्योरिटी दे रही है, तो हमको मालूम तो है, परंतु मैं अगर बाहर से वो चीज ले लेती हूँ तो नेचुरली उसका इफेक्ट मेरे पर आएगा, तो मेरी शक्ति उसमें बजाय मुझे प्रोटेक्ट करने के, मैं प्रोटेक्ट करूं अपने आप को, फाइट करने में लगाऊंगी। फाइट नहीं करना है, समझ लेना है, और फिर उसको साक्षी दृष्टा होकर के देखने की बात है। यानी यह है परिस्थिति, पर मुझे स्वस्थिति से परिस्थिति को हल करना है। और स्वस्थिति क्या है? आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास। घबरा गई तो मैंने पहले ही कमजोर हो गई, इसका मतलब मैंने अटैक, मुझे उसने इफेक्ट ले आई। तो पहले डर नहीं, जब हम अपनी आत्मिक शक्ति में स्थित है कि मैं लाइट हूं, तो लाइट कभी फाइट नहीं करती है। लाइट जली, फाइट डिसअपियर हो गई। तो जब निर्भयता की शक्ति आई तो निर्णय करने की शक्ति, हैंडल करने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हमारी उसके प्रभाव में नहीं आ रही है। परिस्थिति परिस्थिति है, प्रकृति की स्थिति है और मेरी स्वयं की स्थिति है, तो मैं बैलेंस में हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं हलचल यहाँ मचाऊ, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग ऑन द हेड, मैं हैव टू बैलेंस इन माई हेड। मैं देख रही हूँ ये है, आग है, अब आग को बुझाना है तो डायरेक्ट तो जंप नहीं करूंगी, फायर प्रूफ ड्रेस पहनूंगी, वॉटर सोर्स का कनेक्शन रखना पड़ेगा, तभी मैं उसको बुझा सकती हूँ। तो इसलिए मुझे आत्मबल, परमात्म बल, निश्चय का बल, और ये है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, हल कर सकती हूँ, ये विजय पहले अपने पास रखेंगे तो उसका प्रभाव कम होगा, फिर हैंडल करना ठीक होगा। हलचल में हम अचल रहे, स्थिर रहे, जैसे वो एक्सरसाइज होती है ना, किसी भी प्रकार से हम एकाग्र हो जाते हैं, दृढ़, कोई हिलाए भी सही ना तो हाथ हिलता नहीं, ऐसे मतलब हनुमान की तरह, अंगद की तरह स्थिति हमारी ऐसी।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। जैसे आप ये बातें बता रहे थे तो पता चलता है कि स्वाध्याय कितना इम्पोर्टेंट है। जितना हम स्वाध्याय करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे कि हम कौन हैं, हमारा मूल स्वरूप क्या है, उसमें हम स्थित होते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं, स्पिरिचुअली भी, अदरवाइज भी हम अपने आप को हेल्दी भी बनाते जाते हैं। और शायद स्वास्थ्य शब्द का जो आपने डेफिनेशन बताया, स्व की स्थिति में स्थित रहना, उससे स्व का अध्ययन करना, इससे हम सभी अच्छा कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जिनेंद्र,
जिसको तैरना आता है तो वो मत्स्यासन स्वयं कर लेता है, जिसको तैरना नहीं आता वो डरता है ना डूब ना जाऊं, उसको पहले से होगा डूब ना जाऊं। अब क्या हुआ, पहले ही उसका डर ले लिया, इसीलिए ये भी एक आर्ट है, कला है और साथ साथ शक्ति है, तो दोनों बातें है सामने, इसीलिए सामने को देखते हुए सामना करना है। सूर्य नमस्कार, जब मेरे पास परमात्मा के सामने मेरा मुख है तो मेरे पास ज्ञान की शक्ति होने के कारण, योग की शक्ति होने के कारण, सामना करने की शक्ति के साथ हल करने की शक्ति आएगी, इसीलिए हलासन भी है, कर्म को ठीक करने की शक्ति भी आएगी
जी। दीदी एक दोस्त हैं जिनेंद्र हमारे साथ, और वो प्रश्न पूछते हैं, मेरे पुराने संस्कार मुझ पर हावी हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें, ऐसा पूछते हैं।
अभी पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं तो पहली बात है, पुराने संस्कार संस्कार बने कैसे जो मुझे नहीं चाहिए। संस्कार बने हैं कर्म करने से, बार बार कर्म करने से, तो अगर मुझे उन संस्कारों को कमजोर करना है तो उसके बदले में अपोजिट संस्कार का नहीं कर्म करना होगा। तो मैं जितना जितना अपने श्रेष्ठ कर्म के संस्कार, श्रेष्ठ संकल्प करना शुरू करूंगी, जितना जितना निर्णय शक्ति को विल पावर रख दूंगी और कर्म अपना दृढ़ संकल्प रखूंगी, तो मेरे कर्म पर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आएगी। तो श्रेष्ठ कर्म की शक्ति पुराने संस्कार को खत्म करेगी। किसी भी प्रकार का संस्कार तब काम करता है जब हम उसको मेरा संस्कार समझा। अभी ये भी न्यारा रखना है, ये मेरा संस्कार एक अद्वितीय शक्ति है, ये अलौकिक शक्ति, जिसको परलौकिक शक्ति कहते हैं या ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, कि मैं परमात्मा की संतान एक्चुअली एवर प्योर एवर डिवाइन पावन दिव्य मुहूर्त हूं, और मेरे संस्कार दिव्य संस्कार है, तो मेरे संस्कार ओरिजिनल तो दिव्य है। अभी मैले हो गए, ठीक है, बराबर मुझे वो ही अपने संस्कार मैले दिखाई दे रहे हैं, तो मैले हो गए तो साबुन धोना पड़ेगा ना, तो ज्ञान जल जल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, तो दूसरा मटेरियल उसकी अपोजिट का मटेरियल चाहिए। मिट्टी को धो, मिट्टी से नहीं धोएंगे, जरूर उसको जल से धोएंगे, साबुन से धोएंगे। तो ऐसे मेरे पास लक्ष्य चाहिए श्रेष्ठ कर्म का। जितना जितना मैं श्रेष्ठ कर्म का लक्ष्य रखूंगी, उतना मेरे अंदर वो लक्षण बन जाएगा, यानी मेरे जीवन का गुण बन जाएगा, वो शक्ति बन जाएगी। परंतु घबराना नहीं है, यानी पुराना संस्कार आया, घबरा के नए संस्कार को कर्म में नहीं लाऊं। मेरा पुराना संस्कार बहुत पावरफुल है। अरे मैंने योग करना शुरू किया और भी दर्द होना शुरू हो गया टांगों में, पहले तो दर्द नहीं होता था, जब से योग करना शुरू किया फालतू संस्कार संस्कार चलन में आ गए। नहीं, बड़ा सीक्रेट है इसमें। क्या है कि मेरा कपड़ा मैला है, अब मैला है, जब मैं धोना शुरू करूंगी तो पहले मिट्टी ऊपर आएगी बकेट में, मुझे मैल दिखाई देगी। अब मैं उसको डर जाऊं? नहीं, वो पुराना आया है सामने ताकि मैं उसको बकेट को पानी को फेंक दूं बाहर। फिर मुझे और जल चाहिए और सोप चाहिए, यानी और ज्ञान की गहराई चाहिए, अपनी इन्वेंशन चाहिए, निरीक्षण चाहिए, वो भी स्वाध्याय है, अपनी चेकिंग, अपना चेंज। ये यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी की स्टडी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मैं जो अपना चेंज कर सकती हूँ, दूसरा कोई मेरे को नहीं चेंज कर सकता। और वो चेंज मैं परमात्मा के साथ सूर्य नमस्कार पर बुद्धि रखूंगी, योग जिसको कहते हैं, परमात्म योग से, उस योग की शक्ति के लगन की अगन से मेरा पुराना संस्कार भस्म होता है। तो वो साबुन तो हम उस आग में गर्म करेंगे, पर ये जो लक्ष्य है, ये लगन की अगन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए। पर क्या हो रहा है कि वो पानी बाहर आ रहा है, मिट्टी बाहर आ रही है, उसको फेंक के नया डालना है। अच्छा, कोई में ताकत ही नहीं है, मिट्टी भरी हुई है बाहर आ रही, तो उलटने की ताकत नहीं है, तो कंटिन्यू करो उस बाल्टी को, मिट्टी के पानी को नलके के नीचे रख दो फुल फोर्स में, बाहर आ रहा है, धीरे धीरे वो बह जाएगा, मटक बकेट भर जाएगी। तो दोनों एग्जाम्पल है, पावर नहीं है तो भी रेगुलर स्टडी करना, रेगुलर उसमें शुद्ध विचारों को भरना शुरू करो, और वो सफाई हो रहे तो उसको से डरो नहीं, कंटिन्यू पुरुषार्थ करने में सफलता मिलती। इसलिए कहा जाता है योग का मतलब है लगातार तार परमपिता परमात्मा से, एवर स्वच्छ बनाने वाले से, गीता ज्ञान देने वाले से संबंध जुड़ता है, तो विकर्म विनाश होते हैं, विकारी कर्म विनाश होते हैं श्रेष्ठ कर्म करने से। सूर्य चढ़ता है, अंधकार खत्म हो जाता है, तो दूर से भी सूर्य की शक्ति प्रकाश भी देती है, कीटाणु भी भस्म करती है। ऐसे परमात्मा ज्ञान सूर्य से योग लगाएंगे तो आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रकाश भी मिलेगा, और पाप कर्म करने की, विकर्म करने की शक्ति भी, भस्म करने की शक्ति भी।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया कि कैसे पुराने आदतों को, हमारे संस्कारों को बदला जा सकता है, और योग वो शक्ति देती है। आज आप हमारे साथ सीधे जुड़े और स्वाध्याय के बारे में हम सबको बोध दिया और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दोस्तों, ये थे राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, जो हमारे साथ सीधे लंदन से जुड़े थे और स्वाध्याय इस विषय पर आज हमें बोध दिया, स्वयं का अध्ययन करना कितना आवश्यक है ये बताया, अपने आप को जानना और उस पर एक अध्ययन बनाए रखना, स्टडी बनाए रखना, ताकि हम अपनी कमी पेशियों को देखते रहें, उनको निकालते रहें, जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, कोई भी संस्कार हैं, उसे हम बदल सकते हैं। उसके लिए जैसे स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं, वैसे स्वयं का, स्वयं पर अध्ययन ये स्वाध्याय है, और ये पतंजलि के योग सूत्रों में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में दिया गया है, एक नियम के रूप में बताया गया है। तो मैं समझता हूँ हम सभी इसके महत्व को समझेंगे और संपूर्ण योग को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, ताकि योग एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज न बनकर हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक टूल बन जाए। आइए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, अब करते हैं राजयोग मेडिटेशन, और ये कराने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू के शांतिवन परिसर से राजयोग शिक्षिका वंदना जी जुड़ रही हैं और वो हमें मेडिटेशन कराएंगे। जहां कहीं भी आप बैठे हैं वहां पर आप तैयार हो जाइए और अगले 5-7 मिनट के लिए हम सब मिलकर करते हैं राजयोग मेडिटेशन।
इस शरीर से अलग इस शरीर से अलग मैं आत्मा ज्योति बिंद सितारा यह जगमगाता हुआ सितारा मुझ आत्मा में मन बुद्धि और संस्कार तीन कर्मचारियां जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि निर्णय करते हैं, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। हमारे सातों गुण मुझात्मा में निहित है, जिस प्रकार हम अपने एंड्रॉइड मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा की बैटरी को भी चार्ज करना अत्यावश्यक है। इस हेतु आत्मा के पिता परम पिता शिव परमात्मा जो अति शक्तिशाली सर्व गुणों में संपन्न है, हम धीरे धीरे अपने दिव्य बुद्धि के द्वारा यह यात्रा को तय करें। धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर को यहां छोड़ चांद सितारे तारागणों से भी पार पंच महातत्वों से पार ब्रह्मांड से भी पार परंधाम मेरे पिता के पास जा रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य का तप, हवा का झोंका, सुगंध की महक स्वतः ही आती है। उसी प्रकार मुझात्मा में निहित सातों गुणों का स्रोत परमपिता शिव परमात्मा से स्वतः ही प्रवाहित हो रहा है। मैं छोटा सा नन्हा सा टिमटिमाता हुआ सितारा, ज्योति का पुंज, मेरे पिता परमपिता शिव परमात्मा जो परम ज्योति है, उनसे स्वतः ही सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता ज्ञान की लहरें मुझात्मा में समाहित हो रहे। मैं आत्मा सुदृढ़ शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं गुणों और शक्तियों के साथ धीरे धीरे पुनः अपने शरीर में विद्यमान हो रहा हूं। भ्रुकुटी के मध्य, जहां से शरीर का संचालन करो,
दोस्तों ये था आज का मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय शांतिवन परिसर आबू से आपने सुना और एक्सपीरियंस किया। प्रकृति की इन सुंदर छटाओं के बीच जब बैठकर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन स्वतः शांत होता है, और जब हम अपने आप को शांत करने के प्रयास करते हैं, अपने ऊपर अध्ययन करते हैं और अपने ऊपर अटेंशन लाते हैं तो योग की अवस्था में हम ज्यादा गहरी अनुभूतियां कर सकते हैं। आशा करते हैं कि एक छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों के लिए अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे साथ 21 दिवसीय योगा चैलेंज का हिस्सा बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी हम कुछ न कुछ नया हर दिन सीखते रहेंगे। हर दिन एक नया आसन, हर दिन योग के एक नए आयाम और एक नए मेडिटेशन को सीखते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप कुछ हमारे लिए फीडबैक लिखना चाहते हैं या कुछ सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ प्रश्न ही पूछना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं, भले फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जहां पर भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप अपने फीडबैक्स भी दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और साथ साथ अपने प्रश्नों को भी लिखिए। तो कल हमारे साथ जुड़ना न भूलें, अपने दोस्तों को साथ में ले आएं, अपने घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं उन सभी के साथ मिलकर करते हैं इस 21 दिवसीय योगा चैलेंज में संपूर्ण योग की सीख। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं और फिर करते हैं योग को संपूर्ण रीति से। आज के लिए नमस्कार।